पद में 10, 15, 6 श्लोक में ये बदला है। हे आदि पुरुष बलदेव प्रभु के, ये जो भौरे जो गुनगुन कर रहे हैं, ये गुनगुन नहीं कर रहे हैं, सब लोगों को पावन करने वाली, पवित्र करने वाली आपकी लीला कथा, आपकी महात्म कथा का ये गान करते करते आपके साथ में ये गमन कर रहे हैं। कृष्ण और बलदेव जी दोनों वनमाला पहने हुए हैं, उसमें तुलसी के भी पत्र भी और मंजरी भी लगी हुई है, और उनके अंगों में स्वयं का सुगंध भी है, इसलिए भौरे हैं, उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए चल रहे हैं। विशेषकर कृष्ण के लिए तो वहां पर कृष्ण कह रहे हैं, आप ही आदि पुरुष हैं और आपके अंगों में गंध और फूल की माला की गंध के वजह से आपके पीछे पीछे आपका जसोगान करते हुए ये चल रहे हैं। निश्चय ही ये श्रेष्ठ भक्त कुल कोई मुनि होंगे। गायन्ति आदि पुरुषम अनुपथम भजन्ते प्रायो अमी मुनि गणा। अरे ये और कोई भौरे मुनिगण होंगे जो आपके जस को गा रहे हैं। यदि वन मध्य गूढ़ बने भी इस वृंदावन में गूढ़ रूप से अर्थात नर बालक के रूप में, नरदार के नर बालक के रूप में आप मत हैं अपनी क्रीड़ाओं में, तथापि ये आपको पहचान लिए हैं क्योंकि मुनि है ना, मुनि लोग भगवान जैसे नाग मुनि इत्यादि हैं, पहचान लेते हैं, वैसे ही आपको इन लोगों ने पहचान लिया है, इसलिए आपको संघ को छोड़ करके कहीं नहीं जाते। न जहाती अघनात्म दैवम, आपको छोड़ करके कहीं नहीं ये जा रहे हैं भौरे सब, आपका गुणगान करते हुए आपके पीछे पीछे चल रहे हैं जैसे मुनि लोग हैं, नाग इत्यादि ऋषि लोग भगवान के प्रत्येक अवतार में ही जाकर उनका गुणगान करते हैं, छोड़ते नहीं है। यहाँ पर भौरे और दूसरे छोटे छोटे कीड़े जो हैं वो भी भगवान का सुजस काम करते हैं, उनका संग नहीं छोड़ते हैं, उनका भी स्वाभाविक कृष्ण के साथ में अनुराग है। यहाँ पर स्थाव, स्थाव माने क्या, जो स्थिर है, चल स्थिर है, स्थाव वो चलते फिरते हैं, जैसे पहाड़ हैं, पेड़ हैं, लताएं हैं, और उनसे श्रेष्ठ जी जंगम चलने वाले, जंगमों में भी सबसे छोटे कीड़े भौरे इत्यादि, ये भी इनका भी सौभाग्य देखो। भगवान कृष्णचंद्र जी अपने भैया को बतलाते हुए ये बतला रहे हैं, महात्मा अपना ही महात्मा वर्णन कर रहे हैं अपने भाई का महात्मा वर्णन करने के बहाने। एते नलिना, ये भौरे गुंजल छंद से गुंजन कर रहे हैं, गुर्जानुसार स्वाभाविक धर्म है। भुवन पावन आपके जस का गान कर रहे हैं और पत-पत में आपका अनुगमन कर रहे हैं, ये भौरे निरंतर सुजस गान लक्षण भजन करने के लिए आपके संग में जा रहे हैं, कभी आपका संग नहीं छोड़ते हैं। उनका भजन कैसे है, अखिल कोणों के साथ समग्र लोगों के रक्षक, तीर्थ स्वरूप है, वो भजन कैसा, साधु लोग भजन करते हैं, जहाँ पर भजन करते हैं वो भी तीर्थ बन जाता है। क्यों? भगवान की लीला कथाओं की सब समय अवतारणा और कुछ नहीं करते, बस भगवान की लीला कथा जो दूसरों के लिए बहुत ही दुर्घट है सहज रूप में उसी को करते, इसलिए जहाँ वो होते हैं वहीं पर वो तीर्थ बन जाता है। अधिकारी और अनाधिकारी सभी लोगों के लिए तीर्थ हो जाता है। तीर्थ कौन सा है? केवल जल तीर्थ नहीं है, नदियां तीर्थ नहीं है, पृथ्वी तीर्थ नहीं है, जहां हरि कथा है वही तीर्थ है। जहां साधु लोग सब समय भगवान की लीला कथाओं का जन करते हैं वही यथार्थ तीर्थ है। वृंदावन में सब कोई तीर्थ आदमी साधु संत ही नहीं रहे, क्या होगा? तीर्थ का महात्मा तो यही सब बतलाते हैं ना। इसलिए यथार्थ संत ही, विशेष करके कृष्ण तत्व को जानने वाले परम रसिक भागवत तत्व वेत्ता वैष्णव ही तीर्थ स्वरूप, वो जहां रहते हैं वही पर तीर्थ। ये भगवान ही तीर्थ है और उनको अपने हृदय में धारण करते हैं और जहाँ वो प्रकट करते हैं वह तीर्थ हो जाता है। तो भगवान को कैसे प्रकट करते हैं? उनके लीला कथाओं के माध्यम से उनको प्रकट कर देते हैं, वही तीर्थ हो जाता है। तीर्थ किसको कहते हैं? संसार सागर से उद्धार हो जाए जहां रहने से, उसको कहते हैं तीर्थों में स्नान करने के लिए जो कहा गया है ये प्रवंचना है। प्रवंचना मैंने ठगना है। वहां पर ऋषि लोग अपने जीवन का सुख से निर्वाह करने के लिए उद्धम स्थान में रह गए, जैसे पहले प्रयाग था, गंगा और जमुना मिलती थी, दोनों का पानी निर्मल रूप होता। आज से 500 वर्ष की कल्पना कीजिए कैसा आप पवित्र हो। अभी 50 वर्ष भी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते, जब हम लोग 30-40-45 वर्ष पहले थे, जो उससे उम्र की अधिक हो गई वो जानते हैं, उस समय में भी पानी इसका बड़ा पवित्र, लोगों की घर की रसोई उसी पानी से होता था। ठाकुर जी की पूजा के लिए कलश में सभी लोग भर करके लाए, अब तो देखते नहीं जब कोई कलश में लाया और उसको रखे। आत्मन करना भी बहुत गड़बड़ हो गया, पहले बहुत पवित्र पानी होता था। अभी भी गंगा का पानी प्रयाग में पवित्र है, किंतु पहले जैसा पवित्र नहीं। तो उसमें स्नान करने से पवित्रता शरीर की हो सकती है, आत्मा का क्या होगा? किंतु वहां पर जो ऋषि महर्षि रहते थे, भगवत भक्त रहते थे, वो हरि कथा की मंदाकिनी शब्द में प्रवाहित करते थे और वो मंदाकिनी कभी भी उसकी धारा रुद्ध नहीं होती, और उसमें अपने आप स्वाभाविक रूप में कोई यदि पड़ जाए तो उसको वो हरि कथा पर। इसलिए समस्त तीर्थों का भी तीर्थ वो स्थान था जहां पर की हरि कथा। नैमिषारण्य में द्वापर युग में सब ऋषि महर्षि रहते थे, कलयुग के प्रारंभ में 7,000 या 88,000 ऋषि लोग वहां पर भागवत की कथा होती। वहां कौन काल है? सुखताल में सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी को हरि कथा सुनाई थी, गंगा के किनारे ही पर है सुखताल। वहां पर हस्तिनापुर से थोड़ी दूर पासी में, वहां से 20-25 मील दूर शायद या कितना होगा,
मुजफ्फरनगर के पास।
तो वहां पर हरि कथा की मंदाकिनी बहाई थी, इसलिए आज भी वो प्रसिद्ध है। लोग जाते हैं स्नान करने के लिए चक्र तीर्थ में जो पानी घूमता है, किंतु वहां पर कौन सी हरि कथा, कौन सी वो तीर्थ क्या है? हरि कथा। इसलिए जहां पर संत लोग रह करके हरि कथा करते हैं वही तीर्थ है। इसलिए वो कथा कैसी है? लोगों के लिए तीर्थ स्वरूप और संसार तारा, संसार से उद्धार करने वाले। अभी पूछे ये संसार से कौन कौन उद्धार होना चाहते हैं, हम समझते हैं कि सभी लोग हाथ उठाते हैं। ऐसा कौन है जो संसार से उद्धार नहीं पाना चाहता है, वो हाथ उठाए तो, जो मैं संसार से उद्धार नहीं पाना चाहता, उठाओ हाथ।
उठाएंगे नहीं तो भक्त लोग उठाते ही नहीं।
कौन ऐसा व्यक्ति है जो संसार से पार नहीं जाना चाहता सभी, किंतु अब जब भी कहेंगे ऐसे, अच्छा तो अब उठाओ हाथ, ये कौन कौन सा संसार से पार जाना चाहता है, उसमें उठाएंगे। और जब परीक्षा ली जाएगी तो देखेंगे कोई नहीं चाहता। अपने बेटे को, भाई को, बहू को, पति को छोड़कर के कौन जाना चाहता है, कौन जाना चाहता है? संसारिक सुखों को छोड़कर के कौन भव सागर को पार करेगा? भव सागर माने अब फिर जन्म मरण से अतीत हो जाए, कौन चाहेगा? बहुत कम लोग चाहेंगे, विशेष करके जो हरि कथा नहीं सुनते हैं तो वो कभी भी नहीं कर सकते। जो हरि कथा भी सुनते हैं उनमें बहुत कम परसेंट हैं जो कह सकते हैं, जो घर बंधु बांधव रुपया पैसा घर बनाया इतना सुंदर और इसको छोड़ करके भव सागर से पार करने की जरूरत क्या है, हमको जरूरत नहीं है। तो ये हरि कथा कैसी है, भव सागर को पार करा दे, भगवत भक्ति महिमा कहेंगे। आज ये कुछ दिन और ठहर जाइए, भव सागर पार करेंगे, बस और ठहर जाइए कुछ दिनों के बाद में, जब हम और बूढ़े हो जाएंगे, जब हम बच्चे बड़े हो जाएंगे, लड़की लड़का की शादी हो जाएगी और नाती इत्यादि हो जाएंगे, तब भव सागर से पार। तो संसार पार ये इसको भव सागर से पार कराने वाली भगवत भक्ति महिमा ज्ञान को देने वाली गुरु के स्वरूप ये कथाएं होती हैं। ये कथाएं ही गुरु हैं, जो कहता है वही गुरु है। ऐसी हरि कथा जो देना गुरु कौन है, ऐसी हरि कथाओं को दे, भव सागर को अनायास ही पार करके और कृष्ण की सेवा की प्राप्ति है। ऐसी कथाओं को कहने वाले ही यथार्थ में गुरु हैं, जो ऐसा नहीं करते वो गुरु पद पाच्य नहीं। और शिष्य भी इसके लिए नहीं सुनता है, उनके पास में आता है, गुरु कर्ण नहीं करता है, संसारिक लाभ करने के लिए आता है, तो वो शिष्य भी शिष्य नहीं है या शिष्य भी शिष्य। इसलिए गोपियां भौरे बन में रह करके निरंतर आपका यशोगान कर रहे हैं, ये जरूर ऋषि मुनि हैं, इनकी कथाओं का सेवन करने से आदमी भव सागर को पार करके प्रेम संपत्ति को भी लाभ कर सकता है। यह उत्प्रेक्षा ही कर रहे हैं ना, ठीक ठीक कह रहे हैं, उत्प्रेक्षा ही है नहीं, ये ठीक कहा। महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में यमुना देख रहे हैं, गोवर्धन देख रहे हैं, ये उत्प्रेक्षा केवल है या देख रहे हैं
सचमुच?
उत्प्रेक्षा ही नहीं है, वो देखते हैं हम लोग नहीं देखते हैं। ये नारद से कम नहीं है, ये नारद ऋषि इत्यादि मानो भौरे बनकर गए हो सकता है। नारद जी यदि वहां आए तो लोग उनको चारों तरफ से घेर लेंगे ना, और भौरे के रूप में यदि आए तो स्वच्छंद गति से भगवान की लीला कथाओं का गान करते हुए विचरण कर सकते हैं। अभी किसी को पता लग जाए कि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी आए हैं या व्यास जी आए हैं तो क्या तमाशा होगा, यहाँ कोई स्तव स्तुति कर सकते हैं या भजन कर सकते हैं, दिन रात आदमी उनको खेद रहे। इसलिए ये नारद जैसे ऋषि इत्यादि रसिक भक्त लोग भौरे के रूप में आकर के कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। किंतु आत्माराम नहीं है, ये थोड़े आत्माराम नहीं है। देखो ऐसे हैं, ये लकड़ी को ना कठोर लकड़ी है उसको काट करके इस पार से उस पार छेद कर लेते हैं, रहने का स्थान बना लेते हैं लकड़ी को भी। शीशम की भी लकड़ी होगी ना,
कितना ही साल साल
साल भी रहे उसमें छेद कर लेते हैं। और शाम हो गई, भौरे कमलों के ऊपर में उड़ रहे हैं और धीरे धीरे सूर्यास्त होने लग गया और वो भी धीरे 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 कमल बंद हो रहा है। शाम का समय लाली अभी है और धीरे धीरे होते 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 उसे बंद हो गया, तो उसे बंद हो गया, तनिक भी कोई प्रयास नहीं करते तनिक निकलने का। ये प्रेम का कोमल बंधन है। सवेरा जब हुआ, जब सवेरा होता है कृष्ण के जागरण का समय, तो वृंदा देवी उनकी प्रतीक्षा करती है। तो उनको कैसे जगाती है? बेली चमेली कदम्ब के पुष्पों के का सौरभ बहने लगा धीरे धीरे, और हवा ने उनसे मानो वृक्षों का चुंबन कर रही है पवन, और चुंबन करते हुए उनका वह जो सौरभ है सुगंध उसमें एकदम ओतप्रोत हो गया और वो हवा भार हो गई। और सवेरे का कुछ ठंड है, ठंड माने स्निग्ध सुशीत मंथर गति और हवा की हो गई, और वो धीरे 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 वो कमल का भी सुगंध ले लिया और ले करके उसी के अंदर में, कमल के अंदर में धीरे धीरे प्रवेश किया। और वहाँ जो भौरे प्रेम से सो रहे हैं उनको जगा दिया। जगते ही और धीरे धीरे लाली अब आकाश में आने लगी धीरे धीरे, तो वो थोड़ा सा और बंधन ढीला हो गया, तो फुर्र करके उसमें से उड़े। उड़ करके क्या किया, उसका सुगंध लिया और ये लेकर के भनभन करते हुए कोयलों को जगाया, और जगाया किसको?
मुर्गा
ने, ताम्र पिंच को, जहां पर ताम्र आता सुना जैसे यहाँ है ना लाल, किसका होता है सवेरे जो पेट पाट करता है जो पक्षी ये मुर्गा करता है, उनका नाम रखा गया है ताम्र, ताम्र पिच्छ, उनको जगाया और उसने वेद पाठ आरंभ कर दिया और उसने सबको मोरों को और सबको जगा दिया, सखियों को भी जगा दिया, राधा कृष्ण को जगाने का प्रयास करने का। ये भ्रमर को ही ये सुजोग है। तो ये कौन है? साधारण जड़ीय कोई होगा जो कृष्ण राधा को जगा रहा है? ये नारद जी कहते हुए जी हमारा ऐसा सौभाग्य हो तो ऐसा कर, ये साधारण नहीं है, ये आत्माराम कदापि नहीं हो सकते। तो गान कैसे करते? कृष्ण की बीरा कथाओं का, रहस्यपूर्ण लीलाओं का जो गान करते हैं ये आत्माराम लोग नहीं करेंगे, उनको क्या जरूरत है? वो तो ध्यानस्थ होकर के बैठ करके आत्मा का ध्यान करते हैं। वृंदावन में ऐसे लोगों का आत्मकाम और आत्माराम लोगों का कोई भी स्थान नहीं है। ओह आप ही ये मुख्य भक्त होंगे, रसिक भक्त होंगे, ये तो सुख गोस्वामी है ना, सुख के रूप में उनकी पंक्ति में ये बैठने लायक हुए हैं। आज ये सब, आज आपकी असंख्य जो मूर्तियां हैं बलदेव जी करें, उसमें से हमारे अग्रज के रूप में परिपूर्ण स्वरूप उन समस्त मूर्तियों के भी मूल अवतारी के रूप में हमारे जो अग्रज बने हुए हैं, कृष्ण का अग्रज कौन है? मूल संकर्षण नहीं, लोग भूल जाते हैं। मूल संकर्षण का संबंध वृंदावन से नहीं है, बलदेव जी का है, जो मूल संकर्षण के भी आदि है वो बलदेव, इस बलदेव जी के लिए ये कारण। अर्थात तो वो मूल संकर्षण, महासंकर्षण और उससे उत्पन्न होने वाले कोटि कोटि जो रूप हैं, अवतार है, राम आदि इत्यादि जितने भी रूप हैं, समस्त अवतारों के बीज हैं ये साधारण। और उनका यह जस जो वर्णन कर रहा है वो कौन होगा? इसलिए उपासकों में मुख्य आपका ही कोई भक्त है, ये सब जितने भी ये भक्त हैं ये आत्माराम होकर के चुपचाप नहीं बैठेंगे। आत्माराम चुपचाप बैठा रहा, ये चुपचाप नहीं बैठेंगे, भक्त लोग क्या करेंगे? जन्म लेते ही कीर्तन से जन्म, और शरीर त्याग तक अंत तक कीर्तन, और उसके बाद में भी स्वरूप सिद्धि और वस्तु सिद्धि के बाद में भी कीर्तन, ये कीर्तन करना इनका स्वभाव है। तो ये इनका नाम मुनि कैसे हो गया? पहले मनन करते हैं कृष्ण की लीला कथाओं का, तब उसका गायन करते हैं। हम लोग कीर्तन करते हैं, सवेरे कीर्तन होता है विभावरी शेष, पहले तो गुरु जी कीर्तन आरती होती है, मंगला आरती में क्या क्या विशेषताएं हैं जिसने बनाया वो समझा होगा, और उसका यदि संग किसी ने पाया होगा तो वो कुछ कुछ समझेगा, और दूसरे तो केवल गाते चले गए। यदि गाते समय में उस गान का जो 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 गान की जो भावनाएं ही हृदय में नहीं आई तो हारमोनियम के रीड के साथ जैसे गाते हैं, हारमोनियम गाती है ना, और ऐसराज और देह लगा कितने भाव के साथ में, चढ़ाव उतराव के साथ में, आरोह और आरोह के साथ में सराज बजता है, कितने भाव उसमें होते हैं, होता है कि नहीं? सराज में क्या भाव है? उसको सुन करके जो श्रोता है उनमें ये सब भाव होते हैं। सराज लकड़ी का तार के उसमें होते हैं, उसमें क्या भाव होगा? बंसी में भाव थोड़े है, गायक में है। उत्प्रेक्षा करके गोपियां सुखी और दुखी होती हैं। तो हारमोनियम के रीड में वो भावनाएं हैं, भावनाएं कहाँ है? उसके जो श्रोता है यथार्थ में उनके हृदय में। तो उसको भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बनाया, या जो हमारे गुरु जी ने जो बनाया, कितनी भावना के साथ में बनाए हुए, और जब गाते हैं ना दूसरे वो सुनते हैं, तो जिसको गाते हैं उनका उल्लास नहीं कुछ होता है, जो सुनते हैं जिन्होंने बनाया है उनमें उल्लास होता है। ये मनन करते हैं जब बनाया ना तो क्या किया, मनन करते हुए समस्त रस उसमें डाल दिया। जितने हमारे गोस्वामियों के ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को उनमें भर दिया। कदम्ब कानन रास परान वृंदा विपिन निवास, जिसकी आरती हो रही है उसको देख रहे हैं आप, वही हैं। कौन है? कदम्ब कानन रास परायण आप हैं, इसके द्वारा आरती होती है। आरती कौन कर रहा है? जिसकी भावना है वो प्रदीप लेकर के करने वाला आरती नहीं करता। वो आरती कृष्ण तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है मुझे पता नहीं, जिसके हृदय में ये भावना होगी। आप कौन है बीच में? कदम्ब का, वो कदम्ब का वहां पर पेड़ है किंतु भावुक भक्त ने उसे सफेद ढक दिया जैसे वो स्मृति नहीं आए नहीं तो रहा नहीं जाएगा, इसलिए उसको ढक दिया है कदम्ब, और कदम्ब के पुष्प ढक दिए। कदम्ब कानन रास परायण, और रास की जितनी बातें हैं राधा जी का उत्कर्ष उसमें आया, राक्षेश्वरी और राक्षेश्वर और उनके पत्ते फूल इत्यादि का आया। हाँ, कदम्ब कानन रास परायण वृंदा विपिन निवास, वृंदा विपिन में उनका निवास है। छठी करा के गायों के गाड़ों के घर में नहीं, उनका निवास कहाँ है? उनका मन कहाँ है? उनका प्राण कहाँ है? वृंदा विपिन में। रास परायण कदम्ब कानन रास परायण वृंदा विपिन निवासी आनंद वर्धन
प्रेम निकेतन
फुल सर जो जग काम काम गायत्री उठा ले आए यहाँ। ये भावनाएं यदि कोई कीर्तन करे और भावना करे उसमें आरती होती है, ये कृष्ण की आरती है। कितने आदमी हैं जो ऐसा करते हैं? भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ऐसा सुंदर गान रचा है, ये और जसमती नंदन ब्रज वर्णनाथ गोकुल रंजन का गोपी परानधन मदन मनोहर काली दमन विधान अमल हरि नाम अमल विलास। इसके बाद विपिन पुरंदर नवीन नागर वंशी बदन
सुभाष,
कितना सुंदर भाव का ये सब। आजकल ये कीर्तन भी पहले बीच में कुछ होता था, अब ये सब कीर्तन भी धीरे धीरे, क्योंकि भावुक नहीं है, समझते नहीं है तत्व को भक्ति को, जरूरत नहीं है, फुर्सत नहीं है। इसलिए ऐसे लोग हैं, मुनि हैं, मनन करते हैं कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करके और अपने भावों में को बांध करके कीर्तन के रूप में माला कर दिया है कृष्ण के लिए। ये भजन है, इस भजन में कोई प्रवेश कर सके तो यथार्थ भजन है। भजन आप वन में प्रचंड रूप से नर बालक की भांति छिपे हुए हैं, किंतु आपको ये वन लता सर्व व्यंग विष्णु एवं व्यंजयंतो, ये लोग आपको व्यक्त कर देते हैं। भ्रमर लोग गायक लोग आपको प्रकट करते हैं विष्णु के रूप में, आप ही ये बलदेव जी के लिए करें, किंतु हो करें किसके लिए? अपने लिए उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। आपको अभीष्ट देव जान करके आपको प्रत्याग नहीं करते, और साधारण आदमी समझ नहीं सकता, कंस नहीं समझ रहा, उनके जितने चेली चपाटी हैं कोई भी नहीं समझ सकता, साधारण मनुष्य भी उनको नहीं समझ सकता, ऐसे लोग जो हैं और इनके अनुगत जन ही। अपने तो बंदे प्रभु जी छिप करके हैं और उनको ये कर, किंतु ये भी अपने को छिपा करके मानो भौंरे हैं, इसलिए लोगों की नजर नहीं पड़ती। और ये जो गान कर रहे हैं परम प्रेम की का गान कर रहे हैं, ये भी लोगों के समझ में, साधारण लोगों के समझ में नहीं आता।
घमंड किसमें है?
कृष्ण गान कर से इधर संगे थे कृष्ण भक्ति हो गए, यही भाव, इसलिए उसका संग साधारण लोग नहीं करते, किंतु ये अपने को छिपा रहे हैं, गुप्त रखे हैं, जैसे बलदेव जी भी करते हैं, उनके सेवक भी अपने को इसी प्रकार से गुप्त रखते हैं। निजे निधि स्वयं भी अली वेश में अर्थात भौने के वेश में आत्म गोपन किए हुए अपने को छिपा रहे हैं, साधारण लोग ना समझे। भक्त लोग जहां भी कहीं हुए अपने को छिपाने की चेष्टा करते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अंतिम विनोद ठाकुर जी ने अपने अंतिम दिनों में और नरोत्तम ठाकुर जी ने अपने अंतिम दिनों में साधारण रूप में जानने के समय में जैसे रोग से आकृष्ट हो जाते हैं, इन लोगों भी ने दिखलाया कि उनको बात रोग हो गया और उसको पक्षाघात हो गया। पक्षाघात मैंने पैरालिसिस। अब उनका एक अंग काम नहीं कर रहा है या दोनों अंग काम नहीं कर रहे दिख रहा है, किस लिए? जो लोग अभक्त हैं उनको वंचना करने के लिए ऐसा किया, नरोत्तम ठाकुर जी को उद्धव भक्तों ने कहा, प्रभु ये जगत के लोग वंचित हो रहे हैं और अपराध कर रहे हैं, अपराध के कारण इनकी ऐसी दशा है। तो वो उठ करके खड़े हो गए, गंगा में स्नान करके चले आए अपने भजन कुटी और फिर उपदेश देने लगे, प्रवचन करने लगे। तब फिर उनकी आंख खुली। भक्ति विनोद ठाकुर जी आत्मवंचन किया और कुछ आत्मवंचना के लिए और दूसरों को वंचना के लिए भी लिखा। कली काल में गृहस्थ रह करके ही भजन करना ठीक है, जैन धर्म में ऐसा लिखा। क्यों? कुछ त्यागी लोग त्याग का बहाना लेकर भोग में लिप्त रहे, इसलिए क्यों नहीं वो गृहस्थ ही रहे। त्यागी का वेश लेकर के, लाल कपड़ा और संन्यास लेकर के विषयों का भोग करने की अपेक्षा ठीक है कि गृहस्थ वेश में रह करके जितना हो सके करें। अधिकांश लोगों की ऐसी दशा है, इसलिए उन्होंने लिखा। किंतु उनका क्या इच्छा था, जैसे कोई भी ऐसा न रहे, त्याग करके भगवान का भजन न करे, उनका आदर्श ही सब। इसलिए वो लोग भी, साधु संत लोग भी आत्मगोपन करते हैं, साधारण लोग जैसा अपने को दिखाते हैं, जैसे कि लोग उनके भजन में बाधा न। इसलिए ये लोग अस्फुट स्वर में गान कर रहे हैं और अपने प्रेम को सूचित नहीं जगत में होने देते। ये फौड़े, ये फौड़े काले क्यों हो गए? क्यों काले हो गए? काले का गुण गान करते 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 करते, उसके लीला का चिंतन करते, उसके रूप का चिंतन करते करते, ये जैसे कृष्ण काले होने पर भी बड़े सुंदर हैं, ऐसे भौरे भी गुणी और सुंदर हैं, ये काले होने पर भी, क्योंकि कृष्ण की कथा करते हैं। हे आदि पुरुष, जैसे आप आदि पुरुष हैं, ये भी आपके आदि सेवक हैं। कौन? भौरे। आदि पुरुष, यथा आदि पुरुष हो, जथा आदि पुरुष हो तथा तमेव, वैसे तुम भी आदि इनके सेवक हो, इसलिए आप लोग मुक्त हैं। भगवान की कथाओं को कहने वाले जो सुंदर रूप से भगवान की कथाओं को कहते हैं, वो बद्ध हो सकते हैं? बद्ध नहीं हो सकते। इसलिए आपकी लीला के अनुसार में सर्वदा आप लीलाओं के गान करते हुए, उसमें डूबे हुए आपके लीला कथाओं का गान करते हैं। हे अनक, जहाति अनभ आत्मदैवम, जहत मैंने छोड़ देना, पापों को छोड़ देना। आपकी लीला कथाओं को गान करने से हृदय पवित्र हो जाता है और लीला कथाओं के माध्यम से भगवान स्वयं हृदय में प्रवेश करता है। मुझे तो ऐसी अनुभूति और ऐसा मेरा विचार है कि प्रथम दशा में यद्यपि गुरुदेव नाम इत्यादि देते हैं भक्तों को, नामाश्रय कराते हैं, नाम सर्वश्रेष्ठ है, स्वयं कृष्ण स्वरूप है, साधन और साध्य दोनों है, तो भी प्रथम अवस्था में जिनकी हरि कथा में रुचि नहीं है, वो भगवान पर, गुरु पर, शास्त्रों पर, किसी पर भी उनका पूरा विश्वास नहीं। इसलिए हरि कथा पहले दिया गया, श्रवणम इसके बाद में। हरि कथा के प्रति जिनका रुचि नहीं है, जिनकी रुचि नहीं है, वो पंडश्रम, वो हरिनाम करना इत्यादि भी उनका पंडश्रम है। उनका नाम या तो स्वर्ग इत्यादि संसारिक सुखों के लिए अथवा मुक्ति इत्यादि के लिए हो जाए, क्योंकि समझते तो है नहीं। और हरि कथा के माध्यम से हरिनाम का महात्म सुन करके, भगवत प्रेम समझ करके, उनका नाम यथार्थ में स्वरूप का होने लग जाएगा। इसलिए हरि कथा के प्रति अधिक आदर होना चाहिए। हरि कथा ही, हरि कथा के माध्यम से भगवान हृदय में उपस्थित हो जाते हैं और उसके मैल को एकदम साफ सुथरा करके वहां पर नित्य काल के लिए बैठ जाते हैं हरि कथा के माध्यम। कृष्ण नाम करे अपराध में विचार, अपराधी जीव का प्रेम विकार नहीं होगा, अपराध का और आभास इत्यादि का नाम विचार करते हैं और हरि कथा विचार करती है। कोई भी हरि कथा सुन सकता है, किसको की उस ना करके, अत्यंत ज्ञानी हो, निर्विशेषवादी हो, पापी तापी हो, उनको भी नाम सुना करके और वहां से भगवान के नाम में रुचि करा देगा। इसलिए मूल ये हरि कथा है और हरि कथा को सुनाने वाले संत लोग हैं। हे अना सर्व दोष रहित, अन अघ, अघ माने पाप, पाप रहित, सर्व अपराध अग्राह, समस्त पापों को ग्राह्य नहीं करने वाले, कोई भी पाप है उसको ग्राह्य नहीं करते हैं। कौन? बलदेव प्रभु। वैसे आपके ये जो संगी हैं, आपकी लीला कथाओं का जो वर्णन करने वाले हैं, वो भी किसी अपराध को नहीं लेते हैं। यदि वो लोग अपराध लेने लगे भक्त लोग, तो संसार में किसी का उद्धार ही नहीं, बड़े दयालु होते हैं। संसार के लोग, साधारण व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकता। सर्व दुख विमोचक, आप सभी के सब प्रकारों को दुखों को दूर करते हैं और उसको प्रेम दान करते हैं। इसलिए ये जो भक्त लोग भ्रम रूपी भक्त हैं, आपको कैसे छोड़ सकते हैं, कभी नहीं छोड़ते। इसलिए ये लोग सब कभी नहीं छोड़ते, मतलब क्या, दिन रात सूची असूची अकाल दुष्काल किसी काल में भी आपका भजन नहीं छोड़ते। ये भजन है, भजन के लिए ये सब बाधक नहीं है, सभी सुख हो जाते हैं। एक बार गुरु जी से किसी ने पूछा, ऐसे कौन दिन को हरि नाम लेने आऊं, कब सा शुभ दिन है या दीक्षा के? तो उन्होंने कहा, जब ही दीक्षा ली जाए वही सबसे अधिक शुभ का शुभ दिन है और शुभ काल है, शुभ समय। इसे जिसमें दीक्षा हो रही है या हरि नाम को कोई दे, इसे अब शुभ का काल कौन होगा? अकाल दुष्काल जो कुछ हो वो सब कुछ भी शुभ हो जाए। इसलिए भजन के लिए भी ऐसा, बाकी दुख हो तो और भी भगवान का भजन। प्राय शब्द बाहुल्य, प्राय प्रायो अमी मुनिगणा भवती ये मुख्य प्रायो, प्राय माने अधिकतर। कहते हैं यदि कभी किसी समय में भौरे प्रेम में विवेक विशेष के द्वारा भौर में प्रेम उत्पन्न हो जाए और वो विवश हो जाए और उस समय में गान न कर सकें, तो उनका विराम हो जाएगा, अन्यथा नहीं। वही निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखाद अमृत संगीतं पिबत भागवतं रसमावयम् का तो वहां पर जो बता रहे हैं, आलयम, आलयम माने क्या, लय तक एक अर्थ ये भी करते हैं, लय पर यहाँ लय माने मध्याना या अत्यंत मुक्ति का ये परिचायक नहीं है,
दशम दशा,
यहाँ दशम दशा अतुत प्रेमी में मूर्छित हो गए हैं, उस समय में ये कथा नहीं कहेंगे, किंतु भीतर में क्या हो रहा है वो कथा चल रही है। इसी तरह से ये भौरे यदि कुछ नहीं कर रहे हैं, जानते ये समझिए प्रेम में विवश होकर के अवश हो गए, तथापि भक्त वर मुनिगण से ये श्रेष्ठ है, तथापि ये जो भौरे हैं मुनियों से श्रेष्ठ हैं, अथवा किसी समय में परम ऐश्वर्य प्रकट के लिए होने के लिए रात्रि काल में विच्छेद संघटित होने, कमल में बंद हो गए, उस समय में भगदेव जी के साथ में नहीं जा सकते, कमल में बंद है, उस समय प्रेम विवश होकर के कमल के कोमल पंखुड़ियों में बंद हो गए और चेष्टा नहीं हो रही है खोलने की। यदि कोई प्रेमिका प्रेमी को अपने प्रेम से बांध दे तो वो खोलने का कोई प्रयास नहीं करता, ठीक ही ऐसे ही है। प्राय शब्द का भी ऐसा अर्थ करते हैं, वितर्क भी प्राय का होता है, वितर्क माने उसमें वितर्क के लिए स्थान जहां हो उसमें प्राय लगता है, प्राय ही ऐसे करते हैं। अतः तर्क होगा जो कभी कभी नहीं भी करते हैं तो उस स्थिति में तर्क की स्थिति में करते हैं। जिस प्रकार से परम वैष्णव मुनि लोग वेद रूप वन में, वेद एक वन है, बड़ा भारी जटिल वन है, उसमें तरह तरह के पेड़ हैं, उसमें बबुल के पेड़ भी हैं, कांटेदार भी पेड़ हैं, ऐसे पेड़ हैं जिसमें कोई फल फूल है ही नहीं, ऐसे भी हैं, और जिनमें कदम्ब पेड़ भी हैं, आम रसाल पेड़ भी है, पनस है, पनस मैंने कहा बेल जैसा फल जब भीतर में रसदार और ऊपर में कठोर, कौओं के लिए ये संभव नहीं, उसका रसा स्वागत का। ऐसे कुछ खट्टे और मीठे भी होते हैं, जैसे कैंक, कैंक होती है, कैंक इधर में होता है, वो बेली जैसा छोटा बेल और भीतर में
खट्टा मीठा,
खट्टा कुछ मीठा, ऐसे भी इस तरह से ये वन में है। कौन? वेद रूपी वन में कई ज्ञान रूपी निम्ब फल भी हैं, कर्मकांड है सब, यज्ञ इत्यादि हैं, स्वर्ग इत्यादि की पुष्पित वाणियां उसमें देखी जाती है, और उनमें गोपाल तापनी उपनिषद भी है, श्रीमद्भागवत भी वेद का ही परिपक्व फल है। वेद तो वन है और वनों में रसाल जो वृक्ष हैं, उन रसाल वृक्षों के जो फल होते हैं वो फल क्या है?
श्रीमद्भागवत।
ऐसे भी है ये मुनि जो लोग हैं ये सुख है, ये साधारण पेड़ों पर नहीं बैठते हैं, ये किस पेड़ पर बैठते हैं? रसाल, रसाल माने श्रीमद्भागवत रूपी वेद के ऊपर में ये बैठने वाले मुनि हैं। तो ये मुनि लोग वेद स्वरूप ऐसे वन में निगूढ़ होने पर भी इनको सभी लोग नहीं देख सकते, कल्पना नहीं कर सकते हैं, चिंता नहीं कर सकते हैं, उनको ढूंढना बड़ा भारी कठिन है। ऐसे सुख को ढूंढने के लिए व्यास जी को बहुत मंत्र जप तप करना पड़ा और शिष्यों को भेजना पड़ा, बड़ी मुश्किल से खोज करके उस सुख का पता लगाया, तब वो सुख आए। दुर्बोध लीलत्व, उनकी लीलाएं भी उनके क्रियाकलाप भी अत्यंत दुर्बोध हैं। सुखदेव गोस्वामी को सुख पक्षी के रूप में नंगे खड़ंगे जा रहे हैं, स्त्रियां धूल झोंक रही हैं, बच्चे चिटकारी कर रहे हैं, मैंने हंसी दिलकी कर रहे हैं, पत्थर के टुकड़े इन पर फेंक रहे हैं, कहां एक तरफ ये, और कहां जब वो सभा के सामने गए नारद व्यास इत्यादि सभी परीक्षित महाराज उठ करके उनका अभिवादन करने लगे, दोनों दो तरफ की बातें वहां पर, और कर्मी ज्ञानी जो थे उनको समझ सके होंगे, ये तो समझने वाले परीक्षित महाराज क्योंकि वैसे योग्य थे, और वहां पर नारद और व्यास जैसे लोग थे, इन लोगों ने इनको देखा और लेकर के उनको व्यास गद्दी पर बैठा दिया, साधारण आदमी क्या समझेगा। इसलिए कहते हैं दुर्बोध और दुर्लभत्व हेतु, अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे ऋषि मुनि भी जाए कहीं घूम रहे हैं उनको क्या समझेंगे, कोई नहीं समझेगा ये क्या है। वैसे बलदेव प्रभु जी दुर्लभ हैं और इनके भक्त भी दुर्लभ हैं, और इसीलिए ये भक्त लोग दुर्लभ भक्त होने से बलदेव प्रभु जी का संग नहीं छोड़ रहे, उनका महात्मा गान करते हैं, किंतु हो रहा है कृष्ण के लिए, ये कृष्ण भी काले भौरे भी काले, उनसे ये परस्पर परस्पर उदाहरण ये ठीक लगता है, किंतु ज्ञान और कर्म का अवलंबन करने वाले कौन? ज्ञान का अवलंबन करने वाला कौआ, ये कौआ है, और कर्म का लोमड़ी। किंतु पक्षी में
लोमड़ी तो एक ही
होता, गिद्ध,
गिद्ध हो सकता है, गिद्ध ही ठीक है कर्मी, ये गिद्ध। ये वेद मार्ग का अवलंबन करते हैं, किंतु कैसे वेद का? वैसे कर्मी और ज्ञान सूचक वेद का, वेद त्रयी का, एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामालभन्ते, काम और काम से उसका फल लाभ करते हैं, काम कामालभन्ते, और फिर उसको प्राप्त करके फिर वहां से चित्त होकर के गिर पड़ते हैं। और ये ऐसे बल से, ऐसे पथ से ये लोग सबको अपना रहस्य पूर्ण माने होकर के, रहस्य युक्त होकर के, अंतर्यामी के रूप में और सब जीवों के पूज्य रूप में, परमेश्वर के रूप में प्रकाशमान आपका ही ये भजन करते हैं। अपने लिए कृष्ण कहेंगे जो मेरा भजन करते हैं, जैसे कि कर दिया सर्वधर्मानुपत्यजमान एकम शरण, तो लोग कहें